एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जहां सच कभी कभी कहानी से भी ज्यादा अजीब लगता है ना।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बेन मैकिंटायर की जबरदस्त किताब द स्पाई एंड द ट्रेटर के बारे में।
ओलेग गॉर्डियोव्स्की की कहानी, एक सच्ची कहानी जो आपको हैरान कर देगी।
और ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है जैसा आपने कहा, मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान, उसके फैसले पूरा इतिहास बदल सकते हैं।
हाँ, शीत युद्ध को हम अक्सर बड़ी शक्तियों की लड़ाई समझते हैं, लेकिन इसके पीछे के इंसान, उनके डर, उनकी हिम्मत, वो इस किताब में है।
और वफादारी क्या है, धोखा किसे कहते हैं, ये सवाल तो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं, नहीं?
बिल्कुल। अच्छा, कहानी में और गहरे उतरने से पहले लेखक के बारे में जान लेना जरूरी है। बेन मैकिंटायर।
हाँ, ये नाम याद रखने जैसा है, कोई मामूली लेखक नहीं है।
जी, जाने माने ब्रिटिश लेखक हैं, इतिहासकार हैं, लंदन के द टाइम्स अखबार से भी जुड़े हैं, और जासूसी का इतिहास ये उनका खास मैदान है।
सही कहा, उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ किताबों या दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सालों रिसर्च करते हैं, आर्काइव्स में जाते हैं, और जो सबसे जरूरी है,
वो सीधे लोगों से बात करते हैं
जो उस कहानी का हिस्सा रहे।
एग्जैक्टली। जैसे उनकी पिछली किताबें थीं एजेंट ज़िगज़ैग या ए स्पाई अमंग फ्रेंड्स, उनमें भी यही गहराई मिलती है।
और इस किताब के लिए, द स्पाई एंड द ट्रेटर के लिए, तो उनकी पहुंच कमाल की थी।
हाँ, मतलब उन्हें सीधे ओलेग गॉर्डियोव्स्की से बात करने का मौका मिला, जो कहानी का हीरो है एक तरह से।
और सिर्फ उनसे ही नहीं, उनके जो MI6 हैंडलर्स थे, उनके साथ ही, उन सबसे भी।
जी,
ये चीज कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये
शायद इसीलिए वो इतनी मुश्किल जटिल बातों को भी एक दिलचस्प कहानी की तरह बता पाते हैं।
हाँ, वो जासूसी की उस धुंधली डरावनी दुनिया को हमारे लिए थोड़ा रोशन कर देते हैं, मानवीय बना देते हैं।
चलिए, तो अब कहानी के अंदर चलते हैं।
तो ये किताब है किसके बारे में? ओलेग गॉर्डियोव्स्की, KGB, मतलब सोवियत यूनियन की खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके एक बहुत ऊंचे अफसर।
लेकिन अंदर ही अंदर वो सोवियत सिस्टम से कह सकते हैं नफरत करने लगते हैं।
हाँ, मुंह भंग हो जाता है, और वो फैसला करते हैं पश्चिम के लिए जासूसी करने का, ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के लिए।
और वो बन जाते हैं शीत युद्ध के सबसे कामयाब, सबसे जरूरी डबल एजेंट्स में से एक।
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सोचने वाला है। मैकिंटायर कहते हैं कि गॉर्डियोव्स्की ने ये सब पैसे या नाम के लिए नहीं किया।
नहीं, उनका मकसद कुछ और था।
जी, वो सोवियत शासन की क्रूरता, उसके भ्रष्टाचार से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने एक बड़े आदर्श के लिए अपनी कसम तोड़ी।
और वो आदर्श क्या था? परमाणु युद्ध को टालना पूर्व और पश्चिम के बीच।
सोचिए जरा, कितना बड़ा दाव था।
किताब हमें उस दौर के मॉस्को ले जाती है, वो घुटन भरा माहौल।
फिर गॉर्डियोव्स्की के विचारों में जो बदलाव आता है, डेनमार्क में MI6 कैसे उनसे संपर्क साधती है, बहुत धीरे धीरे, सावधानी से।
और फिर KGB में उनका कद कैसे बढ़ता जाता है, आखिर में वो लंदन पहुंचते हैं।
हाँ, लंदन में KGB स्टेशन के चीफ, मतलब एक्टिंग रेजिडेंट, और वहां से उन्हें मिलती है क्रेमलिन के सीक्रेट्स तक सीधी पहुंच।
इसमें वो जासूसी वाली सारी चीजें हैं, डेड ड्रॉप्स, ब्रश पास,
गुप्त इशारे, सीक्रेट कम्युनिकेशन, वो सब रोमांचक लगता है पढ़ने में।
लेकिन साथ ही वो डर भी महसूस होता है, वो तनाव, दोहरी जिंदगी जीने का बोझ।
हाँ, वो कोई जेम्स बॉन्ड वाली ग्लैमरस दुनिया नहीं थी, असली खतरा था। कहानी फिर 1983 के एबल आर्चर संकट पर पहुंचती है।
और फिर कैसे उनका राज खुलता है, और मॉस्को से उनकी वो अविश्वसनीय फरारी रोंगटे खड़े कर देने वाली।
चलिए, कहानी के कुछ खास हिस्सों को थोड़ा और समझते हैं। पहला पड़ाव, कैसे एक जासूस का सिस्टम से भरोसा उठता है।
हाँ, उनका परिवार तो KGB वाला ही था, करियर तो उधर ही बनना था।
बिल्कुल, लेकिन 1961 में बर्लिन में पोस्टिंग हुई, बर्लिन की दीवार बनते देखी उन्होंने, वो क्रूरता, उसने शक पैदा किया।
पर असली मोड़ शायद 1968 में आया।
हाँ, जब सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया, प्राग स्प्रिंग को कुचल दिया।
इसने तो जैसे उनके अंदर का पूरा विश्वास ही तोड़ दिया, उन्हें लगा ये सिस्टम, ये सही नहीं है।
और इसी टूटे विश्वास ने जमीन तैयार की अगले कदम के लिए, भर्ती।
डेनमार्क में 70 के दशक में
MI6 ने उन्हें पहचाना।
हाँ, पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत नाजुक थी, टाइम लगा उसमें। MI6 ने बहुत धीरे धीरे भरोसा कायम किया।
ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, गॉर्डियोव्स्की खुद तैयार हुए, अपनी मर्जी से, जमीर की आवाज पर।
बिल्कुल, और यहीं से शुरू हुई उनकी वो मुश्किल दोहरी जिंदगी, केजीबी अफसर भी, MI6 एजेंट भी। सोच सकती हूँ हर पल डर, पकड़े जाने का, रिश्तों में तनाव, कितना अकेलापन महसूस होता होगा।
हाँ, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा रहा होगा। फिर आता है तीसरा दौर, तरक्की और लंदन।
कमाल की बात है ना, डबल एजेंट होते हुए भी केजीबी में ऊपर चढ़ते गए, मॉस्को वापस गए,
और फिर 1982 में लंदन पोस्टिंग, और जल्दी वो एक्टिंग रेजिडेंट बन गए, मतलब ब्रिटेन में केजीबी के बॉस।
ये तो MI6 और CIA के लिए समझिए लॉटरी लगने जैसा था।
हाँ, सोने की खान, क्योंकि अब वो ट्रेमलिन की सोच, उनकी प्लानिंग, उनके डर सब कुछ बता सकते थे।
और वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं दे रहे थे, वो समझा रहे थे कि सोवियत लीडरशिप सोच कैसे रही है ना।
एग्जैक्टली, यहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब HINT की असली कीमत पता चलती है। सैटेलाइट ये नहीं बता सकता कि दिमाग में क्या चल रहा है।
और इसका सबसे बड़ा सबूत है चौथा चरण, एबल आर्चर 83 संकट।
हाँ, नवंबर 1983, नाटो का एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास,
और सोवियत लीडर्स खासकर एंड्रोपोव को पक्का यकीन हो गया कि असल में परमाणु हमले की तैयारी है। वो डर गए,
पूरी तरह डर गए, और जवाबी हमले की तैयारी करने लगे। दुनिया एकदम किनारे पर थी,
और यही गोर्डिएव्स्की की भूमिका सबसे अहम हो जाती
है। बिल्कुल, वो अकेले थे जो पश्चिम को ये पुख्ता तौर पर बता सकते थे कि मॉस्को का डर असली है, ये कोई दिखावा नहीं है।
और ये खबर पहुंची थैचर तक, रेगन तक। उन्होंने अपनी भाषा बदली, माहौल शांत करने की कोशिश की।
मैकिंटायर का तर्क है, और काफी वजनदार तर्क है, कि शायद अकेले गोर्डिएव्स्की की इस इंटेलिजेंस ने तीसरा विश्व युद्ध होने से रोक दिया।
सोचिए, एक आदमी की हिम्मत और उसके फैसले का असर।
लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती, एक अंधेरा मोड़ भी आया। पांचवा चरण, विश्वासघात।
और ये धोखा गोर्डिएव्स्की की तरफ से नहीं था।
नहीं, ये पश्चिम की तरफ से था। एक CIA अफसर एल्ड्रिच एम्स, 1985 की बात है।
वो पैसों के लिए?
हाँ, पैसों के लालच में सोवियत संघ के लिए जासूसी करने लगा, और उसने उन सारे सोवियत लोगों के नाम बता दिए जो CIA के लिए काम कर रहे थे, लगभग सभी के।
गॉर्डियस्की तो MI6 के लिए थे, CIA के लिए नहीं।
हाँ, पर इंटेलिजेंस शेयर होती थी। एम्स को पता चल गया और उसने KGB को बता दिया।
या कितना बड़ा फर्क दिखता है दोनों में। गॉर्डियस्की आदर्श के लिए लड़ रहे थे और एम्स सिर्फ पैसों के लिए।
बिल्कुल, MI6 और CIA को शक तो हो गया था कि कोई गद्दार है अंदर, पर वो एम्स को टाइम पर नहीं ढूंढ पाए,
जिसका नतीजा हुआ छठा चरण, मॉस्को में जाल बिछना।
मई 1985, गॉर्डिएव्स्की को अचानक मॉस्को बुलाया गया, बहाना प्रमोशन मीटिंग का था।
पर शक तो था कि ये जाल है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते थे।
हाँ, मना करना मतलब जुर्म कबूल करना। मॉस्को पहुंचे तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, एक डाचा ले जाया गया, पूछताछ हुई,
और उन्हें वो ट्रुथ सीरम भी दिया गया था ना।
जी, हालांकि वो सीधे सीधे कबूल करने से बच गए, पर उन्हें समझ आ गया कि उनका राज खुल चुका है।
अब वो निगरानी में थे 24 घंटे, अपने ही शहर में कैदी, बस गिरफ्तारी और मौत का इंतजार।
लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और यहाँ आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, सातवां चरण, ऑपरेशन पिम्लिको, फरारी।
MI6 ने उन्हें लंदन छोड़ने से पहले एक इमरजेंसी प्लान दिया था,
बहुत ही ज्यादा रिस्की।
हाँ, कोड नेम था ऑपरेशन पिम्लिको। सिग्नल देना था एक खास सड़क के कोने पर, खास टाइम पर, एक सुपरमार्केट का बैग लेकर खड़े होना।
हफ्तों की निगरानी के बाद आखिरकार एक दिन उन्हें मौका मिला।
किसी तरह वो अपने पहरेदारों को चकमा देकर सिग्नल देने में कामयाब हो गए,
और इसके बाद मॉस्को में MI6 स्टेशन हरकत में आ गया।
प्लान सुनने में ही फिल्मी लगता है, दो कारें, उनमें MI6 अफसर और उनकी पत्नियां, ताकि किसी को शक ना हो।
वो फिनलैंड बॉर्डर की तरफ ड्राइव करेंगे।
रास्ते में एक सुनसान जंगल वाली जगह पर गॉर्डिएव्स्की से मिलेंगे, उसे कार की डिक्की में छिपाएंगे,
और फिर KGB पेट्रोल्स, स्निफर डॉग्स, सबसे बचते हुए बॉर्डर पार कराएंगे। किताब में इसका जिक्र पढ़ते हुए सांस रुक जाती है, कितना तनाव रहा होगा।
पर चमत्कारिक रूप से प्लान कामयाब हुआ।
हाँ, वो आजाद थे, अविश्वसनीय, सिर्फ गॉर्डिएव्स्की की नहीं, MI6 टीम की भी हिम्मत।
वाकई क्या कहानी है, इसे जो सबक मिलते हैं वो भी उतने ही गहरे हैं।
पहला तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन।
हाँ, आज इतनी तकनीक है, सैटेलाइट है, AI है, लेकिन इंसान के इरादे, उसका डर, वो तो इंसान ही समझ सकता है।
बिल्कुल, एबल आर्चर संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
दूसरा है वो आदर्शवाद और लालच का फर्क, गॉर्डिएव्स्की बनाम एम्स।
हाँ, एक ने सिद्धांतों के लिए जान जोखिम में डाली, दूसरे ने सिर्फ पैसों के लिए सब कुछ बेच दिया। ये हमें अपनी जिंदगी में भी सोचने पर मजबूर करता है ना,
हमारी प्रेरणाएं क्या हैं।
बिल्कुल, तीसरा सबक है उस धोखे का मनोवैज्ञानिक बोझ।
वो जेम्स बॉन्ड वाला ग्लैमर नहीं है इसमें। ये लगातार डर, अकेलापन, रिश्तों पर पड़ने वाला असर, ये बहुत भारी होता है।
हाँ, ये उस काम की मानवीय कीमत दिखाता है।
चौथा है संगठनों की अपनी दिक्कतें, ब्यूरोक्रेसी, लापरवाही, अंदरूनी झगड़े।
केजीबी अपनी कट्टर सोच की वजह से चूकी, CIA अपनी लापरवाही की वजह से एम्स को पकड़ नहीं पाई,
जबकि MI6 ने गॉर्डियवस्की के साथ जो भरोसे का रिश्ता बनाया वो ज्यादा कारगर रहा। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबक है। भारत में भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों में ये चीजें दिखती हैं।
और पांचवा, वो निष्ठा वाला सवाल, वफादारी किसके प्रति?
क्या गॉर्डियवस्की गद्दार थे या एक ऊंचे मकसद के प्रति वफादार?
ये सवाल आसान नहीं है। शायद कभी कभी सही काम करने के लिए आपको अपने तात्कालिक दायरे से ऊपर उठना पड़ता है।
और आखिरी सबक, एक व्यक्ति का साहस।
हाँ, उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होना जिसमें आप पले बढ़े, ये जानना कि पकड़े जाने पर क्या होगा और फिर भी वो करना, कमाल की हिम्मत थी।
और न सिर्फ उनकी बल्कि उनके हैंडलर्स की, उस रेस्क्यू टीम की भी।
किताब में कुछ लाइनें हैं जो सच में याद रह जाती हैं, जैसे गॉर्डियवस्की की सोच के बारे में लेखक ने लिखा है,
हाँ, कि वह अपने देश को नहीं बल्कि उस आपराधिक गिरोह को धोखा दे रहा था जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। वह एक देशभक्त था।
ये उनके अपने नजरिए को दिखाता है। वो खुद को गद्दार नहीं मानते थे।
और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पर वो लाइन, गॉर्डियवस्की ने कुछ अनूठा और अनमोल पेश किया। KGB के दिमाग में एक खिड़की, वह सिर्फ रहस्य नहीं बता रहा था बल्कि उनके पीछे की सोच की व्याख्या कर रहा था।
हाँ, मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, समझ, इनसाइट, ये ज्यादा कीमती था।
और वो फरारी वाले प्लान, ऑपरेशन पिम्लिको,
ये योजना खूबसूरती से, सरलता से, पागलपन से, शानदार ढंग से ब्रिटिश थी। इतनी दुस्साहसी कि या तो पूरी तरह काम करती या भयानक रूप से फेल होती।
ये उस काम के रिस्क दिखाता है, ऑल और नथिंग।
और एम्स से तुलना वाली वो लाइन बहुत सीधी और सच्ची है,
गॉर्डियवस्की दृढ़ विश्वास का जासूस था, एम्स नकदी के लिए गद्दार था। एक पश्चिम के आदर्शों में विश्वास से प्रेरित था, दूसरा बैंक खाते में क्या आ सकता है उससे।
ये कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की नहीं है, इसके सबक आज भी उतने ही काम के हैं।
पहला तो यही कि दुनिया में देशों के बीच जो तनाव है उसे समझने के लिए सिर्फ मिलिट्री ताकत देखना काफी नहीं है।
हाँ, दूसरे की सोच, उसका कल्चर, उसका डर समझना, ये ज्यादा जरूरी हो सकता है। गलतफहमी से बचना बहुत जरूरी है।
दूसरा, अपने जमीर की सुनना।
हाँ, ये कहानी दिखाती है कि अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आवाज उठाना, सही के लिए खड़ा होना, ये मायने रखता है। एक अकेला इंसान भी फर्क ला सकता है।
तीसरा, संगठनों के लिए, चाहे वो सरकार हो या कंपनी,
विश्वास बनाना, लापरवाह न होना, अंदर के खतरों को पहचानना, ये सबक बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और चौथा, संकट के समय कैसे बर्ताव करें।
एबल आर्चर संकट दिखाता है कि डर और गलतफहमी कैसे चीजों को हाथ से निकाल सकते हैं।
साफ बात करना, दूसरे को समझने की कोशिश करना, ये तनाव कम करने के लिए जरूरी है। ये हमारी रोज की जिंदगी पर भी लागू होता है।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास वो सिर्फ तारीखें और बड़ी घटनाएं नहीं है।
नहीं, वो इंसानों के फैसलों से बनता है, उनके डर, उनकी हिम्मत, उनके चुनावों से।
ओलेग गॉर्डियवस्की जैसे लोग, उनके जैसे फैसले इतिहास का रुख मोड़ देते हैं।
और मेरे लिए ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की अहमियत को फिर से साबित करता है। आज के डिजिटल युग में भी इंसान की समझ, उसकी नियत को पढ़ने की क्षमता, ये बेमिसाल है।
और बेन मैकेंटायर ने इतने गंभीर विषय को इतनी दिलचस्प कहानी की तरह पेश किया है, ये भी कमाल है।
हाँ, किताब हाथ से छूटती नहीं है।
आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, क्या किसी व्यक्ति की वफादारी अपने देश से भी ऊपर हो सकती है?
हाँ, जैसे इंसानियत के प्रति या अपने जमीर के प्रति। गॉर्डियवस्की की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।